पृष्ठ संख्या 165। उदाहरण के लिए कुछ शेर नीचे दिए जाते हैं। अंग्रेजों को संबोधित करके कहते हैं, पृष्ठ संख्या 166। कोई पूछे कि ऐ तहजीबे इंसानी के उस्तादों, ए जुल्म आराइयां ताके, ए हस्र अंग्रेजियां कब तक। इमाना तुमको तलवारों की तेजी आजमानी है, हमारी गर्दनों पर होगा इसका इम्तहां कब तक। ए माना किस्सा ए गम से तुम्हारा जी बहलता है, सुनाए तुमको अपने दर्दे दिल की दास्ता कब तक। मिटाओगे हमारा इस तरह नामो निशां कब तक। अकबर इलाहाबादी, जिनका पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन था, हास्यरस के महान कवियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म 1846 ईस्वी में इलाहाबाद की तहसील बारा में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने जमाने के दस्तूर के मुताबिक छोटी पाठशालाओं में प्राप्त की और कई छोटी छोटी नौकरियां भी की। 1866 ईस्वी में मुख्तारी की परीक्षा में सफल हुए और नायब तहसीलदार बना दिए गए। 1870 ईस्वी में हाई कोर्ट में एक जगह मिल गई और उन्होंने वकालत का इम्तहान पास कर लिया। कुछ समय वकालत करके जब जज हो गए और 1903 ईस्वी तक किसी न किसी रूप में न्यायालय विभाग से संबंधित रहे। इसी बीच में उन्हें खान बहादुरी की उपाधि भी मिल गई थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फेलो भी चुन लिए गए थे। अकबर की मृत्यु 1921 में हुई और इलाहाबाद में ही दफन किए गए। अकबर जो वहीद इलाहाबादी के शिष्य थे, ज़्यादातर गज़लें लिखते थे। शायद इसी प्रभाववश अकबर भी शुरू में केवल गज़लें ही लिखते थे, जिनमें कभी-कभी तसव्वुफ़ के विचार होते थे, परंतु अधिकतर लखनऊ का रंग उन पर छाया हुआ था। युवावस्था में संगीत कला से भी दिलचस्पी पैदा हो गई और कुछ मित्र ऐसे मिल गए थे जिनकी संगत से बुरे रास्तों पर चलने लगे थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक प्रकार की धार्मिकता इस तरह रची हुई थी कि वह बहुत जल्द संभल गए। धर्म और उनकी रीतों को सदैव अपनाते रहे। मान्यताओं पर उन्हें मन से विश्वास था। शायद इसी वजह से स्वभावतः विनोद प्रिय होने पर भी मर्यादाओं के प्रति असाधारण रुचि का प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने 1866 ईस्वी के लगभग काव्य रचना आरंभ की। उनके तीन काव्य संग्रह कई बार प्रकाशित हो चुके हैं। चौथा संग्रह उनकी मृत्यु के बाद छपा। कुछ और कविताएं एवं लेख उनके परिवार में मौजूद हैं। अकबर का युग भारतीय जीवन में महान परिवर्तनों का युग था और उनका बड़पन यह था कि उन्होंने अपने समय के विभिन्न प्रकार के संघर्षों को चेतनापूर्वक समझने की चेष्टा की और छोटी बड़ी सभी घटनाओं को अपनी कविता का विषय बनाया। यह एक प्रकार की नवीन यथार्थवादिता थी, जिसमें प्रतिदिन होने वाली बातों, पृष्ठ संख्या 167 को हास्य और व्यंग्य के लिबास पहनाकर सुंदर कविता के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। अकबर जब युवावस्था में पहुंचे तो देश पूर्णतया अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था और गदर की विपत्तियों के पश्चात मुसलमानों का मध्यम वर्ग अंग्रेजी राज्य से समझौता कर चुका था। अकबर भी सरकारी नौकर बन चुके थे, परंतु उनकी आँखें खुली हुई थीं और देश की दुर्दशा उनसे देखी न जाती थी। नए जीवन की समस्याएं इतनी जटिल थीं कि अकबर कभी उनसे विमुख होकर अतीत की ओर लौट जाते थे और उसी के गुण गाकर संतोष कर लेते थे, और कभी उसके सामने परास्त होकर नैराश्य की बातें करने लगते थे। आरंभ में उनके यहाँ हास्य और व्यंग्य का पता नहीं चलता, परंतु 1885 ईस्वी के बाद से उन्होंने इसी को अपनी कविता का विशेष माध्यम बना लिया। अकबर की शिक्षा जो कुछ थी और जिन परंपराओं में उन्होंने आंखें खोली थीं, वह समसामयिक स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए वह ज्ञान के बदले अंतः प्रेरणा पर विश्वास रखते थे और अपने विचारों ही की सहायता से नए युग की समस्याओं को हल कर लेना चाहते थे। उन्होंने अपने विचारों में पूरब और पश्चिम का एक निश्चित विभाजन कर लिया था और सारे नैतिक एवं धार्मिक गुण उनको पूरब में ही दिखाई पड़ते थे। पश्चिम केवल अपने पाशविक बल के आधार पर पूरब का गला घोट रहा था। उन्हें यह भी संदेह था कि पाश्चात्य प्रभाव केवल देश के भौतिक साधनों को ही नष्ट नहीं कर देगा, बल्कि उसके अध्यात्मवादी स्वभाव को भी मिटा डालेगा। इसलिए उनकी कलम में जितनी शक्ति थी, उनके विचारों में जितना जोश और उनके शब्दों में जितना विष था, उन सब से काम लेकर अकबर पूरब को पश्चिम से दूर रखना चाहते थे। अकबर यह जानते थे कि इस तूफान को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में पश्चिम से आए हुए विचारों से लाभ उठाना अनिवार्य था। इसीलिए उनके बहुत से विचार प्रतिक्रियावादियों से मिल जाते हैं। वह किसी भी स्थिति में विज्ञान और नए विचारों को लाभदायक नहीं समझते थे। यह एक प्रकार की आदर्शवादिता थी, जो जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि का परिणाम कही जा सकती है। उनकी कविता में तसव्वुफ का भी कुछ अंश था, वह भी उन्हें आदर्शवादी बनाता था। वह जीवन के परिवर्तनों को तुच्छ जानते थे, और उनका विचार था कि जो लोग नई चेतना का साथ दे रहे हैं, वह नैतिक सिद्धांतों पर आघात कर रहे हैं। इन विचारों का परिणाम यह हुआ कि वह अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य की प्रेरणा, विज्ञान की जानकारी, नारी जात की शिक्षा और स्वतंत्रता, मशीन सभी चीज़ों के विरोधी बन गए। वह डार्विन, स्पेंसर, मिल इत्यादि की हंसी उड़ाते थे, और भाग्य में अटूट विश्वास रखने के कारण बदलती हुई परिस्थितियों का अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं कर सकते थे। उनका अंतिम आश्रय धर्म था, और जहाँ कहीं से भी उस पर चोट पहुँचने का भय होता था, वह उसका विरोध करते और व्यंग्य के तीर चलाते थे। पृष्ठ संख्या 168। अकबर की विशेषता यह है कि उन्होंने अंग्रेजी राज की आर्थिक लूट खसोट को अच्छी तरह समझ लिया था। वह उनकी सभ्यता के बाह्य रूप को एक झूठी पॉलिश समझते थे। उनके सांप्रदायिकता पैदा करने के प्रयत्नों की पोल खोलते थे। इस प्रकार हास्य की ओट से वह अंग्रेजी राज्य पर अत्यंत सशक्त प्रहार करते थे, और सरकारी नौकर होते हुए भी मुंह में आई हुई बात कहने से न चूकते थे। उनको इस बात का एहसास जरूर था कि हृदय की बात खुलकर नहीं कह सकते हैं। एक शेर में कहते हैं, मत खुला ए गवर्नमेंट, अकबर अगर होता उसको भी आप पाते गांधी की गोपियों में। अकबर की रचनाओं को भली भांति समझने के लिए इस्लाम धर्म, मुस्लिम संस्कृति, भारतवर्ष के इतिहास और 20वीं शताब्दी की राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हंसी हंसी में वह ऐसी बातों की ओर संकेत कर जाते हैं जिन्हें जाने बिना उसके व्यंग्य से आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अंग्रेजी, फारसी, अरबी और हिंदी शब्दों का प्रयोग बड़ी कुशलता से करते थे, और अपने दिल की बात किसी न किसी प्रकार विनोदात्मक शैली में प्रकट कर देते थे। अकबर उर्दू के एक महान कवि और हास्य रस के सबसे बड़े कवि समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए ये शेर देखिए, हर चंद की कोट भी है, पतलून भी है, बंगला भी है, पाट भी है, साबुन भी है, लेकिन ये मैं तुझसे पूछता हूँ हिंदी, यूरोप का तेरी रगों में कुछ खून भी है? गोलियों के जोर से करते हैं वो दुनिया को हजम, इससे बेहतर इस गिरजा के वास्ते चूरन नहीं। क्या कहूँ इसको मैं, बदबख्ती अनेशन के सिवा, इसको आता नहीं अब कुछ इमिटेशन के सिवा। कौम के गम से डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। पृष्ठ संख्या 169। कोठी में जमा है ना डिपॉजिट है बैंक्स में, कल्लास कर दिया मुझे दो चार थैंक्स में। कर दिया करजन जन, मुर्दों की सूरत देखिए, आबरू चेहरे की सब फैशन बनाकर छीन ली। पाकर खिताब नाच का भी जौक हो गया, सर हो गए तो बाल का भी शौक हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ होने के थोड़े समय बाद ही से इतने कवि और लेखक सामने आने लगते हैं कि उनमें से कुछ ही का वर्णन किया जा सकता है। राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक कविताओं के साथ साथ गजल भी नए साँचे में ढल रही थी, और कुछ प्रमुख कवि केवल गजलों के ही द्वारा जीवन की समस्याएं प्रस्तुत करते थे। उनका दृष्टिकोण और उनकी चेतना गजल के उन कवियों से विभिन्न थी जो इससे पहले गुजर चुके थे, परंतु यह भी याद रखना चाहिए कि गजल में जो परिवर्तन होते हैं उनका पता स्पष्ट रूप से नहीं चलता। फिर भी जब हम आधुनिक काल की गजलों का अध्ययन करेंगे तो उनमें नई आवाज़ और जीवन की समस्याओं के प्रति नया दृष्टिकोण मिलेगा। इस स्थान पर केवल उन्हीं के संबंध में कुछ कहा जा सकेगा जो प्रमुख समझे जाते हैं। इस समय के कवियों में कई ऐसे भी हैं जो गज़ल और दूसरे प्रकार की कविताएं दोनों ही के लिखने में निपुण हैं, परंतु उनकी ख्याति वास्तव में किसी एक के ही कारण होती है, जिसे पंडित रतननाथ सरशार कवि भी थे, परंतु वह केवल गद्य लिखने वाले समझे जाते हैं। इसी प्रकार मुंशी दुर्गा सहाय सुरूर, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त और डॉक्टर इकबाल इत्यादि बड़ी सुंदर गजलें भी लिखते थे, किंतु उनकी काव्य रचनाओं की विशेषताएं उनकी कविताओं ही में प्रकट होती हैं। दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबाद के रहने वाले थे। उनके घर में चिरकाल से हकीमी होती थी और फारसी, अरबी और उर्दू की चर्चा थी। वहीं उन्होंने 1873 ईस्वी में जन्म लिया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, परंतु वह आत्मगौरव रखने के कारण उसी जीवन में आनंद प्राप्त करते थे। वह बालपन ही से कविताएं लिखने लगे थे जो उर्दू की प्रसिद्ध कविताओं में प्रकाशित होती थीं। शराब पीने का ऐसा चस्का पड़ गया था कि उससे उनका स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो गया। यहाँ तक कि 37 वर्ष की आयु में 1910 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। सुरूर की कविताओं में एक प्रकार के शोकजनक वातावरण का अनुभव होता है। उनकी भावुकता या तो पूरी शक्ति से देशभक्ति के विचार प्रकट करते समय उभर पृष्ठ संख्या 170 आती है, या किसी करुणा प्रधान स्थिति का चित्रण करते समय। उन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर भी बहुत सी कविताएं लिखी हैं। कुछ कविताओं में प्रकृति का उल्लेख भी बड़ी सफलतापूर्वक किया गया है। सुरूर अंग्रेजी भाषा कम जानते थे, फिर भी उन्होंने लगभग 20 अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद इस प्रकार किया है कि अंग्रेजी कवियों की विशेषताएं मिटने नहीं पाई हैं। वह दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते काव्य रचना ही में मग्न रहते थे, इसलिए थोड़ी सी आयु में ही उन्होंने बहुत कुछ कह डाला। इनके दो संग्रह जामे सुरूर और खुमखानाए सुरूर प्रकाशित हो चुके हैं। उर्दू कविता के नए रंग को आगे बढ़ाने और देशभक्ति के विचारों को प्रोत्साहन देने में सुरूर की कविताओं ने बड़ा भाग लिया। बालपन में फारसी अधिक पढ़ने के कारण उनकी भाषा फारसी से बोझिल और कठिन हो गई है। इसी के साथ साथ उपमाओं और अलंकारों के प्रयोग ने उसे कुछ और कठिन बना दिया है। उदाहरणार्थ कुछ शेर देखिए। किसी मस्ते ख्वाब का है अवस इंतजार, सो जा कि गुजर गई शब आधी, दिले बेकरार सो जा। ए नसीम ठंडी ठंडी, ए हवा के मस्त झोंके, तुझे दे रहे हैं लोरी मेरे गुमसुमार, सो जा। ए तेरी सदाए पैहम महत्तम न कर दे, मेरे पर्दादार सो जा, मेरे राजदार सो जा। मुझे खून रुला रहा है तेरा दम बदम तड़पना, तेरे गम में आह कब से हूँ मैं अश्क बार सो जा। मुंशी ज्वाला प्रसाद वर्क, महाराज किशन प्रसाद शाद, पंडित अमरनाथ साहिर इत्यादि भी इसी युग से संबंध रखते हैं, परंतु इनमें जो महत्व चकबस्त और इकबाल को प्राप्त है वह किसी और को नहीं। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त लखनऊ के एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। वह 1882 ईस्वी में पैदा हुए और 1907 ईस्वी में कैनिंग कॉलेज से बीए एलएलबी पास करके सन 1908 ईस्वी में वकालत प्रारंभ की। थोड़े ही समय में वह यहाँ के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। 1926 ईस्वी में सहसा उनका देहांत हो गया। चकबस्त अपने बचपन से ही कविताएं लिखते थे। आतिश, गालिब और अनीस की कविताओं का पाठ बड़ी दिलचस्पी से करते थे और उन्हीं से प्रभावित हुए थे। उस समय देश की राजनीति में जो हलचल मची हुई थी और स्वतंत्रता की लड़ाई जिस मंजिल पर थी, चकबस्त की कविता उसका प्रतीक कही जा सकती है। राष्ट्रीयता ने जड़ तो पकड़ ली थी, लेकिन अभी अंग्रेजों से स्वाधीन होने की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी, जो उन्हें पृष्ठ संख्या 171 देश से निकाल बाहर करे। इसलिए चकबस्त भी अंग्रेजी राज की छत्र छाया में ही होम रूल प्राप्त करने का उपदेश देते थे। हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति से उनकी कविताएं भरी हुई हैं। इन भावनाओं को उन्होंने ऐसी शक्तिशाली रचनाओं में प्रस्तुत किया है कि इस समय तक उनकी समानता करने वाले कवि बहुत कम देख पड़ते हैं। बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के बंदी बन जाने और मरने पर उन्होंने बड़ी प्रभावशाली रचनाएं की हैं और देश की गौरव रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग देने पर उत्साहित किया है। वह विचार स्वतंत्रता की बड़े उपासक थे और उस समय भाषण और लेखों पर जो प्रतिबंध लगाए जाते थे उनका विरोध बड़े जोरों से करते थे। उन्होंने कुछ धार्मिक और नैतिक सुधार से संबंध रखने वाली कविताएं भी लिखी हैं, परंतु यदि सबको मिलाकर देखा जाए तो प्रतीत होगा कि वह उस समय को देखते हुए एक क्रांतिकारी कवि थे और कभी देश के प्राचीन गौरव की याद दिलाकर, कभी वर्तमान काल की आर्थिक दुर्दशा का चित्रण करके और कभी भविष्य का अनुमान लगाकर आगे बढ़ाना चाहते थे। उनकी भाषा लखनऊ की शुद्ध परिमार्जित भाषा थी। चकबस्त बड़े अच्छे गद्यकार भी थे और उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिससे उनके ज्ञान, आलोचना शक्ति और ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण का पता चलता है। मृत्यु से कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना काव्य संग्रह सुबह वतन प्रकाशित होने के लिए भेज दिया था, लेकिन वह उनकी मृत्यु के बाद निकला। यह संग्रह देवनागरी लिपि में भी छप चुका है। देश की प्रशंसा में एक कविता के कुछ भाग देखिए। ऐ खाके हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है, दरिया ए फौजे कुदरत तेरे लिए रवा है। तेरी जमी से नूरे हुस्ने अजल आया है, अल्लाह रे जेब ओ जीनत क्या औजे इज्जो सा है। हर सुबह एक खिदमत खुर्शीदे पुर जिया की किरणों से गूंधता है चोटी हिमालिया की। गौतम ने आबरू दी इस मावदे कुहन को, सरमद ने इस जमी पर सदके किया वतन को, अकबर ने जाम उल्फत बख्शा इस अंजुमन को, सींचा लहू से अपने राना ने इस चमन को। पृष्ठ संख्या 172। सब सूरबीर अपने इस खाक में निहां हैं, टूटे हुए खंडहर हैं या उनकी हड्डियां हैं। बरसों से ही रहा है बरहम शमा हमारा, दुनिया से मिट रहा है नामो निशा हमारा। कुछ कम नहीं अजल सिखावे गिरा हमारा, एक लाशे बेकफन है हिंदोस्ता हमारा। इसके भरे खजाने बर्बाद हो रहे हैं, जिल्लत नसीब खावे गफलत में सो रहे हैं। उर्दू साहित्य का वर्तमान काल गद्य का युग कहा जा सकता है, परंतु इसी काल ने ऐसे कवि भी पैदा किए जो जीवन की समस्याओं के समझने में दर्शन और तर्क, इतिहास और सामाजिक विज्ञान से काम लेते हैं। इनकी कविता मानव जाति के प्रति वैसे ही सामाजिक और आर्थिक विचार प्रस्तुत करती है जैसे कोई विचारशील लेखक अपने लेखों में वाद विवाद के पश्चात प्रस्तुत करेगा। कवि का माध्यम कल्पना और भावुकता होती है। उन्हीं के द्वारा वह जीवन की गहराइयों में उतरता है और आंतरिक संघर्ष का पता लगाता है जो मानव में समाज और प्रकृति के अन्याय के विरुद्ध पैदा होती है। इसका सबसे सुंदर और उत्कृष्ट वर्णन डॉक्टर इकबाल की कृतियों में मिलेगा। कई कारणों से इकबाल की रचनाएं वाद विवाद का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि एक ओर तो मुसलमान प्रतिक्रियावादी उन्हें अपनी ओर खींचते हैं और अपना नेता बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर प्रगतिशील उनकी कविताओं में मानवता के प्रति आत्मीयता एवं जागरूकता पाते हैं जिसे किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं किया जा सकता, और तीसरी ओर यह झगड़ा उठ खड़ा होता है कि उन्हें एक कवि के रूप में देखा जाए या दर्शन शास्त्री के रूप में। यहाँ इस विवाद में पड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इकबाल की रचनाओं में इतनी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक धाराएं आकर मिलती हैं कि उनका विश्लेषण दो चार पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। केवल उनकी कविता के मूल आधारों और विशेषताओं का परिचय संक्षिप्त रूप से किया जा सकेगा। अंग्रेजी तथा उर्दू में छोटी बड़ी सैकड़ों पुस्तकें इकबाल पर निकल चुकी हैं और व्यक्ति जो भी आलोचनात्मक अध्ययन करेगा उसे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा।